Wir bei Obino, Namo Buddhai, Jai Bin. So, we started this morning with the refuges and precepts.
तो आज की सुबह हमने त्रिशरण और पंचशर को ग्रहण करके की.
We started with Buddham Saranam Gacchami.
हमने शुरुआत की बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ.
So when we say Buddham Saranam Gacchami, we're saying that we consider the Buddha to be the only source of security, the highest value in the universe.
तो जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा कहते हैं, तो हम यह मानते हैं कि बुद्ध ही हमारे सबसे सुरक्षित शरण स्थान है या हमारे उच्च मूल्य है.
Only the Buddha can lift us above all the difficulties of this world.
केवल बुद्ध ही हमें सारी कठिनाइयों से और परिस्थितियों से ऊपर उठा सकते हैं.
So the Buddha is our only refuge.
तो बुद्ध ही हमारे एक अनुसरण स्थान है, शरण स्थान है.
And from the Buddha comes the Dhamma, from the Buddha comes the Sangha.
और बुद्ध से ही धम्म आया और धम्म से संघ आया.
So we're saying that the Buddha is our only refuge.
तो हम कहते हैं कि बुद्ध ही हमारे केवल शरण स्थान है.
But what we say in these ancient languages, ancient Indian languages, Buddham Saranam Gacchami.
तो क्या अर्थ होता है जो प्राचीन भारतीय भाषा में जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि?
Gacchami means I go.
गच्छामि का मतलब मैं जाता हूँ.
So it's a very active commitment.
यह बहुत ही सक्रिय शरण गमन है.
I go to the Buddha as my refuge.
मैं बुद्ध को अनुसरता हूँ या उनको शरण जाता हूँ.
So it's not that well, you just take the Buddha as your refuge and that's it.
तो ऐसा नहीं है कि केवल हम बुद्ध को एक शरण स्थान करके स्वीकारते हैं और वहाँ रुक जाते हैं.
But you're going closer and closer to the Buddha.
हम जाते हैं बुद्ध के ज्यादा से ज्यादा करीब.
So can we please leave photographs? It's very distracting for me and for the audience. Yeah. So yes, we go for refuge to the Buddha.
तो हम बुद्ध को शरण जाते हैं.
So you have to keep on going.
तो हमें क्या है बार-बार जाना है.
So for instance, we wanted to go to the Mahabodhi temple.
मान लीजिए हम अभी महाबोधि मंदिर में जाना चाहते हैं.
It's not enough to say I go to the Mahabodhi temple.
यह केवल इतना ही कहना केवल पर्याप्त नहीं है कि मैं बस मंदिर में जाता हूँ.
You have to actually walk. You have to move closer and closer to the temple.
आपको क्या है चलना पड़ेगा, आपको वहां तक जाना पड़ेगा.
So when we say Buddham Saranam Gacchami, we're saying we're going to get closer and closer to the Buddha.
इसका अर्थ यह होता है कि हम बुद्ध से करीब करीब और करीब जाते हैं.
We're going to get so close to the Buddha that we become the Buddha.
हम बुद्ध के इतने करीब जाते हैं ताकि हम बुद्ध बन सके.
It's not enough just to take the Buddha as a refuge. You have to become the Buddha.
आपको केवल उनको अनुसरण या उन्हें शरण जाना पर्याप्त नहीं है, तो आपको बुद्ध भी बनना है.
So it's very, very important for us to really understand who the Buddha is.
तो यह हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि कौन है बुद्ध.
If you want to communicate with somebody, you have to look at them. We've just seen that.
अभी हमने देखा कि आपको अगर कोई बात बतानी है, किसी को संवाद करना है, तो आपको उन्हें देखना पड़ेगा.
You have to be aware of them.
उनके बारे में आपको जागरूक रहना पड़ेगा.
And the more you're aware of them, the closer becomes your communication.
जितने आप उनके प्रति जागरूक रहते हैं, उतना ही संवाद आपका निकट होता है, करीब होता है.
So you could say that our Buddhist practice is a communication exercise with the Buddha himself.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो बौद्ध आचरण है, यह बुद्ध के साथ प्रत्यक्ष संपर्क है.
If we can really communicate with the Buddha, we will become more and more like the Buddha.
अगर हम बुद्ध को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो शायद हम बुद्ध के पास करीब करीब हैं.
That's what going for refuge to the Buddha means.
यही अर्थ है बुद्ध को शरण जाने का.
It means becoming into a relationship of communication with the Buddha.
इसका अर्थ ऐसा है कि बुद्ध के साथ हमारा जो संपर्क है, उसके साथ हम आचरण में उसे रखते हैं.
In that communication, you will be transformed.
क्योंकि इस संवाद से आप परिवर्तित होंगे.
You will become like the Buddha.
आप बुद्ध के जैसा बनेंगे.
So yes, it's very, very important for us to understand the Buddha and to enter more deeply into communication with him.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध को हम गहराई से समझें और उनके गहरे समझ में जाएं.
But that's not easy.
लेकिन यह आसान नहीं है.
It's not very easy at all.
यह बिल्कुल आसान नहीं है.
Because in a way the Buddha is completely beyond our understanding.
क्योंकि बुद्ध पूरी तरह अपने समझ से परे है.
It's not just that the Buddha is a sort of different kind of being.
इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्ध कोई अलग सजीव है.
Well, after all, you know, a cat is a different kind of being.
अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्ली जो है यह अलग सजीव है, जीवित प्राणी है.
But you can understand a cat.
लेकिन आप बिल्ली को समझ सकते हैं.
You know what a cat wants.
आपको पता है कि क्या बिल्ली को चाहिए.
A cat wants a mouse.
उसको चाहिए चूहा.
A cat wants another cat.
एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली चाहिए.
A cat likes milk.
उसको दूध अच्छा लगता है.
So we can understand a cat.
तो हम इस तरीके से बिल्ली को समझ पाते हैं.
In a way, a cat is a bit like us.
मान लीजिए कि शायद हमारे जैसी वो बिल्ली है.
There's a bit of a cat in us. There's a bit of us in the cat.
तो हम में से कुछ अंश बिल्ली में है और बिल्ली का कुछ अंश हम में है.
But it's not really like that with the Buddha.
लेकिन ऐसी बात बुद्ध के साथ नहीं है.
It's a different quality.
यह बहुत अलग गुण है.
Well, of course, the Buddha was born a human being.
निश्चित रूप से बुद्ध एक मानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया.
He was born just like us.
जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही वे पैदा हुए.
When he was born, when he was just a baby, we could understand him.
जब वे एक बालक के रूप में पैदा हुए तो हम उन्हें समझ सकते थे.
Obviously, from a very early age, he was an extraordinary being.
निश्चित रूप से अपने जन्मदिन से ही वह एक अप्रतिम ऐसे बालक थे.
He was a human being, even if an extraordinary one.
वो अप्रतिम थे, उसके बावजूद भी वे केवल मानव ही थे.
You know, when he was hungry, when he was a baby, he cried, presumably.
हो सकता है उनको जब भूख लगी हो तो वो रोए होंगे.
And so on. He would have human responses.
So इस तरीके से जो मानवीय प्रतिसाद है वह सामान्य मानवीय प्रतिसाद उनमें थे.
But then, as his life unfolded, he came here to Buddhagaya.
तो जैसे ही वे बड़े हुए वे बोधगया में आए.
And he came to where the Bodhi tree is now.
अब वो वही आए जहाँ आज यह बोधि वृक्ष है.
And he sat beneath that tree.
और उस बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे.
And he woke up.
और वे जागरूक हुए.
He gained bodhi.
उनको संबोधि की प्राप्ति हुई.
And he became thereby a quite different sort of being.
और इसके पश्चात वे कुछ अलग या अप्रतिम हुए.
There's a famous story about this.
इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है.
After he left the area of the tree, he walked towards Shravasti.
जैसे ही उन्होंने बोधि वृक्ष को छोड़ा, वो बोधि वृक्ष के बाहर आए और वे सारनाथ की दिशा से चल पड़े.
Maybe he walked along this road here.
हो सकता है कि शायद ये जो रास्ता है वहीं से वो चले हो.
And somewhere on that road, he met a Brahmin wanderer.
और एक चलते चलते उस दिशा में वो एक ब्राह्मण यात्री को मिले.
Well, as the Buddha was walking from the Bodhi tree, obviously he was a very striking appearance.
निश्चित रूप से बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की थी, इसलिए उनका जो व्यक्तित्व था या उनका दर्शन था यह एक विशेष था.
He was very, very still, very mindful.
वे बहुत ही जागरूक थे, बहुत ही शांत थे.
He had a lot of energy.
बहुत ऊर्जा या वीर्य उनमें था.
And he was shining with happiness, with freedom.
और स्वतंत्रता की और मुक्ति का जो आनंद है या तेज है वो उनके चेहरे पे था.
Anybody who's at all sensitive could see that this was somebody different.
कोई भी अगर इस बात से संवेदनशील होगा तो वो सीधा उनको जान सकता था.
So this Brahmin wanderer saw the Buddha walking towards him.
तो इस ब्राह्मण ने बुद्ध को उनके तरफ आते हुए देखा.
And he thought to himself, what kind of a being is this?
और उन्होंने सोचा कि ये किस तरीके के सजीव हो या किस तरीके के मानव है.
It's not an ordinary human being, that's obvious.
ऐसे लग नहीं रहा है कि निश्चित रूप से यह कोई सामान्य इंसान है.
So when the Buddha came up to him, he said to him, Who are you?
तो जब बुद्ध जब उनके करीब आए तब उन्होंने बुद्ध को पूछा कि आप कौन हैं?
Are you a god?
क्या आप ईश्वर हैं?
You know, maybe he thought he was Indra or Brahma or something like that, come down and walking on this earth.
शायद उनको लगाओ कि यह कोई ब्रह्मा है या कोई इंद्र है जो धरती पर उतर रहे हो और चल रहे हो.
Well, the Buddha said no.
लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं.
You know, some people believe that the Buddha was Vishnu, come down to this earth.
बहुत लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि बुद्ध विष्णु का अवतार है जो इस धरती पर आए.
Well, the Buddha was quite clear about that himself.
लेकिन बुद्ध स्वयं ही इसके बारे में काफी स्पष्ट थे.
No, I'm not a god.
नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ.
So the Brahmin wanderers thought, well, he's not a god. What else is he?
तो वह जो ब्राह्मण यात्री था उन्होंने देखा कि अगर यह ईश्वर नहीं है तो फिर यह कौन है?
So he said, well, are you a human being?
तो उन्होंने पूछा क्या आप मानव है?
And the Buddha said, no.
बुद्ध ने कहा नहीं.
So Brahmin thought, well, not a deva, not a human being.
तो बुद्ध ने कहा यह तो ईश्वर नहीं है, ये इंसान भी नहीं है.
Maybe he's a ghost, bhoot.
तो उनको लगा हुआ ये शायद ये भूत है.
He said, sir, are you bhoot?
तो उन्होंने कहा क्या आप भूत हैं?
No.
उन्होंने कहा नहीं.
Are you a yaksha or rakshasa?
उन्होंने कहा क्या आप यक्ष हैं, राक्षस हैं?
No.
उन्होंने कहा नहीं.
This is not God, not a human being, not a ghost, not a demon. What is he?
अगर यह ईश्वर नहीं है, इंसान नहीं है, यक्ष नहीं है, राक्षस नहीं है, तो फिर यह कौन है?
So he said to the Buddha, look, I can't work it out. What are you?
तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कौन हैं, तो आप कौन हैं?
So the Buddha said, I am a Buddha.
तो बुद्ध ने कहा मैं एक बुद्ध हूँ.
So he's making it quite clear he's something we can't altogether understand.
तो यह इस बात से बहुत स्पष्ट कर रहे थे जो हम अभी हम समझना चाहते हैं.
You know, we like to think in categories, don't we?
हमें हमेशा ही किसी दृष्टिकोण में विचार करना अच्छा लगता है.
We like to think, well, are you a man, are you a woman?
हम हमेशा ही ऐसा सोचते रहते हैं कि क्या आप इंसान हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं?
Are you Indian, are you English?
क्या आप भारतीय हैं, आप अंग्रेज हैं?
Which varna do you come from?
कौन सी वर्ण व्यवस्था से आप आते हैं?
Which jati do you come from?
कौन से जात से आप आए हैं?
This is the way we like to think.
इस तरीके से हम सोचना पसंद करते हैं.
Because we think when we know somebody's jati, when we know somebody's varna, when we know where they come from, we know them.
और हम ऐसा सोचते हैं कि किस जाति से, किस प्रांत से, किस राज्य से, किस देश से यह आया है, तब हम जानते हैं कि हाँ मैं अभी इसको समझ गया.
But of course, we don't really know that.
लेकिन निश्चित रूप से हम उन्हें सही मायने में जानते नहीं है.
And this is even more true of the Buddha.
और यह निश्चित रूप से बात सच है प्रत्यक्ष बुद्ध के बारे में.
You can't put the Buddha in one of the categories that we usually understand people through.
तो सामान्यतः या प्राय लोग जिस अपने संकुचित दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ऐसे किसी संकुचित दृष्टिकोण से बुद्ध को हम नहीं समझ सकते.
The Buddha is something altogether much, much bigger, much more vast.
इससे भी परे इतने कई विशाल और विशाल दृष्टि के बुद्ध हैं.
Yes, it's important that we know he started as a human being.
यह महत्वपूर्ण है कि हमें समझना है कि उन्होंने एक इंसान के रूप में ही शुरुआत की.
But he became something more than a human being.
लेकिन इंसान से भी वे कुछ ज्यादा थे, उनसे कुछ परे थे, कुछ था उनमें.
It's important we know he started as a human being because it means we can do what he did.
यह महत्वपूर्ण है यहाँ समझना. उन्होंने एक इंसान के रूप में शुरुआत की और हम भी एक इंसान है तो हम वही बन सकते हैं.
But we're not just trying to understand another human being.
We are not just trying to understand another human being.
In the book, it's the Buddha.
लेकिन बुद्ध के परिपेक्ष में हम उसी तरीके से जैसे इंसान को समझते हैं वैसा प्रयास यहाँ नहीं कर रहे.
We're trying to understand an altogether different state of mind.
निश्चित रूप से एक अलग मानसिक अवस्था को हम समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं.
And as I said yesterday, we understand that to some extent by understanding his life.
कल हमने यह जानने की कोशिश की उनके जीवन को थोड़ा सा जान के.
But we don't really understand fully.
लेकिन हम पूरी तरह यह बात नहीं समझ गए.
We may know the details of what happened when he was here in Buddhagaya.
हम समझ सकते हैं कि उन विश्लेषण को कि बोधगया में जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे.
But that still does not bring us close enough to the Buddha.
लेकिन वही पर्याप्त नहीं है बुद्ध को करीब से समझने के लिए.
We need to use our spiritual imagination.
हमारी जो आध्यात्मिक कल्पना है उसे हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है.
We need to use our imagination to get closer to the Buddha.
हमें अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है बुद्ध के और करीब जाने के लिए.
And we can reach closer to the Buddha with our imaginations.
और हमारे कल्पना से हम बुद्ध के ज्यादा करीब जा सकते हैं.
Now this has been a problem for Buddhists from the Buddha's own time.
तो यह एक समस्या है स्वयं बुद्ध के समय से.
Obviously in the Buddha's time, people could meet him and get to know him.
अब निश्चित रूप से जब बुद्ध स्वयं जीवित थे तो शायद बुद्ध के वो लोग मिल सकते थे, उन्हें जान सकते थे.
But the Buddha always issued a warning.
लेकिन बुद्ध ने हमेशा ही एक चेतावनी दी.
He said, "Don't think that because you can see me, that you know me."
बुद्ध ने यह चेतावनी दी कि ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे जान रहे हैं.
Just because you can see this body doesn't mean you know who I am.
केवल मेरा यह जो शरीर है, यह शरीर अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे जान जाते हैं, ऐसा मत सोचिए.
He said, "You won't know me through my body. You'll know me through my dharma."
वो कहते हैं कि आप मुझे मेरे शरीर से नहीं समझ सकते, आप मुझे मेरे धर्म से समझ सकते हैं.
So the dharma is the way in which we come to know the Buddha.
तो धर्म है ऐसा मार्ग जिससे हम बुद्ध को समझते हैं.
But even though the Buddha said this, of course, people had a strong feeling for the Buddha and for his body.
तो
They had a feeling for the Buddha, and they had a feeling for him as represented by his body.
निश्चित रूप से बुद्ध के प्रति जिनकी जो भावनाएं थी, तो उनके शारीरिक अस्तित्व से उनकी श्रद्धा थी.
That's why they kept relics of his body.
इसलिए उस श्रद्धा से उन्होंने उनके जो अवशेष थे, उन अवशेषों को रखा.
You could say those relics were a vehicle for the imagination.
तो यह जो अवशेष है, यह अवशेष एक मार्ग है अपनी कल्पना को समझने के लिए.
And they also remembered him through various symbols.
तो उन्होंने उनको अलग-अलग प्रतीकों से भी समझा.
We know that to begin with, Buddhists didn't actually show a picture of the Buddha.
तो उन्होंने जो अगर हम बौद्ध बनते हैं, तो केवल उनके चित्र से हम बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे.
If they wanted to represent the Buddha at the moment of enlightenment, they'd show the Bodhi tree.
अगर प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, तो अगर बुद्ध के संबोधि को अगर उन्हें दर्शाना है, तो वो बोधि ट्री से, बोधि वृक्ष से वो बताते थे.
You see people bowing to the tree, but there wouldn't be anybody sitting underneath it.
आप देखते हैं कि इस बोधि वृक्ष को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है.
Or you'd see a Dhammachakra.
या आप धम्मचक्र को देखते हैं.
And people sitting around, the five monks sitting around the Dhammachakra.
और वो धम्मचक्र के इर्द-गिर्द पांच भिक्षु बैठे होते हैं.
But you wouldn't see the Buddha.
लेकिन वहाँ आप बुद्ध को नहीं देखते.
They felt the Buddha was so remarkable that they couldn't show him.
तो वो ऐसा सोचते हैं कि बुद्ध इतने अप्रतिम हैं कि उन्हें दिखाना मुश्किल है.
Sometimes he'd be shown by an umbrella.
कभी-कभी एक छत्र से या छतरी जिसे हम कहते हैं, उससे बुद्ध को दिखाते हैं.
Sometimes he'd be shown by his footprints.
उनके पदचिन्हों से बुद्ध को दिखाते हैं.
And you'll see many of those footprints at the Mahabodhi temple.
अब आप देखते हैं कि इस महाबोधि विहार में ऐसे कई उनके पदचिन्ह हैं.
And you may see some of these other symbols that I've just mentioned.
और अलग प्रतीक है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो वहां दिखते हैं.
But sometime maybe 100-200 years after the Buddha died, they began to represent him by murti.
बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात 100-200 साल के बाद उन्होंने एक बुद्ध रूप के द्वारा उनको बताने की कोशिश की.
And they showed him in different ways at different points in his life.
तो उनको उन्होंने बताने की कोशिश की उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग चित्रों से.
And gradually there emerged a range of ways of showing the Buddha.
इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे कई आयाम बुद्ध को दर्शाने के लिए उभरे.
If you look around the Mahabodhi temple, you'll see many, many different images of the Buddha.
अगर आप इस महाबोधि टेम्पल के आसपास देखते हैं, तो कई ऐसे आयाम हैं जिससे बुद्ध दिखते हैं.
The most common one is the Bhumisparsha Mudra.
सबसे जो सामान्य है वो भूमिस्पर्श मुद्रा है बुद्ध की जो दिखती.
But you'll see many other positions that the Buddha is sitting in.
लेकिन ऐसे और भी अलग मुद्रा है जिसमें हम बुद्ध को देखते हैं.
So we find that gradually, maybe about 1,000 years after the Buddha died, 500 to 1,000 years after he died, five principal forms emerge.
बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात 200 या 500 साल के बाद मुख्य रूप से पांच प्रमुख मुद्राएं बुद्ध की उभरी.
They began to be arranged as a mandala.
और इन पांच मुद्राओं ने एक मंडल का स्वरूप ले लिया.
In Orissa, you have some wonderful remains from later Buddhism, and you'll see these images there.
ओरिसा में ऐसे कुछ बुद्ध के पश्चात जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो वहां है और वह हम आज भी देख सकते हैं.
But these five principal forms that the Buddha is represented through are what I'm going to be talking about these 5 days.
तो इन पांच दिनों में मैं मुख्यतः बुद्ध के पांच प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में बात करूंगा.
You'll see them on some of the stupas down at the Mahabodhi temple.
किसी स्तूप में यह महाबोधि टेम्पल के या मंदिर के नीचे आप देख सकते हैं.
It won't be in exactly this form, but you'll see the five figures around the some of the little stupas.
ऐसे छोटे-छोटे जो वहां स्तूप है उसमें अलग-अलग मुद्राएं बुद्ध की है.
Or rather, you'll see four figures around the stupa, and the fifth is represented by the stupa itself.
तो ऐसे चार मुद्राएं मुख्यतः चार दिशाओं से बुद्ध की दिखती है और स्तूप एक पांचवी उनकी मुद्रा अपने आप में दर्शाता है.
So this mandala represents the Buddha's mind.
तो यह जो मंडल है यह बुद्ध के मन को दर्शाता है.
If we can understand this mandala, we can get more deeply into what it was like to be the Buddha.
अगर हम इन पांच या इस मंडल को हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि बुद्ध गहराई से कैसे है मन के भीतर.
Sometimes in later tradition they're talked about as five Buddhas.
बाद की परंपराओं में उन्हें पंच बुद्ध या पांच बुद्ध के नाम से जाना गया.
Sometimes they're referred to as some, it's referred to as the mandala of the five jinnas.
तो बाद में यह जो पांच बुद्ध है यह पांच विजेताओं के रूप में माना गया.
जिना is the word. Yeah.
जिना यह शब्द है जिसे विजेता हम कह सकते हैं.
So you sometimes hear it referred to in that way, the five jinnas.
तो कभी-कभी हम इसको पांच जिना के रूप में बोलते हैं.
But they're not really five separate people, as it were.
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पांच भिन्न-भिन्न पुरुष है.
It's a way of expressing the fullness of what the Buddha was.
यह एक तरीका है पूरी तरह बुद्ध को बताने का.
So in other words, here we're not dealing with historical truth.
तो यहाँ हम एक ऐतिहासिक सत्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं.
We're dealing with poetic truth.
तो हम एक काव्यात्मक सत्य के बारे में बात कर रहे हैं.
You know, in poetry, natural objects stand for qualities of the mind, emotional experience.
आपको पता है कि काव्यात्मक रूप से हम उनको गुणों को किसी उदाहरण से दर्शाते हैं.
So you might have a poem all about an eagle flying in the sky.
मान लीजिए ऐसी कोई कविता है कि जो बाज है या गरुड़ है वह आकाश में उड़ रहा है.
Well, you might say, my heart is like an eagle soaring in the sky.
ऐसा आप कह सकते हैं कि मेरा दिल ऐसा है मान लो जैसा ये जो बाज है या गरुड़ है आकाश में उड़ रहा है.
I beat my wings and 1,000 miles fly by.
और आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे ये जो पंख है ये हजारों किलोमीटर या दूरी पर जा रहे हैं.
So, that was a spontaneous share. But what do you feel when you hear that?
लेकिन आप मान लीजिए कि कैसा आपको लगता है जब मैं ऐसा कह रहा हूँ.
What do you feel when you hear that your heart is like an eagle in the sky?
कैसा आपको लगता है जब यह आसमान में उड़ता हुआ पंछी आपका दिल है ऐसा मैं कहता हूँ.
What is the feeling associated with that? What's the emotion associated with that?
कौन सी भावना इससे जुड़ी हुई है?
Well, freedom, for instance.
निश्चित रूप से स्वतंत्रता की भावना.
Joy.
आनंद.
Triumph. Triumph, victory. So through that image of the eagle flying in the sky, you can communicate qualities of emotion.
यह जो उदाहरण है या जो कल्पना है पंछी आकाश में उड़ने की इससे हम अपने मन की भावना को बता सकते हैं.
This is the way poetry works.
इसी तरीके से काव्य चलता है.
You know, I say, I feel very free.
मैं कहता हूँ कि मैं बहुत स्वतंत्र हूँ.
But it doesn't communicate much.
इसका कुछ अर्थ नहीं होता.
Well, it's like Baba Sahib.
अब मान लीजिए बाबा साहेब.
After his conversion, he said, I feel as if I've been released from hell.
बाबा साहब ने धर्मांतरण के पश्चात यह कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं नरक. बंधन से मुक्त हो गया.
If he just said, "I feel free now,"
अगर उन्होंने कहा होगा कि अब मुझे मुक्त लग रहा,
it doesn't say anything.
अब इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं है.
But you say, "I've been released from hell."
उन्होंने कहा कि मैं नरक से मुक्त हुआ.
Well, you have no doubt about what he feels.
अब निश्चित रूप से या निसंदेह आप समझ सकते हैं कि उनकी भावनाएं कैसी थी.
बाबा साहब probably didn't believe in hell.
निश्चित रूप से बाबा साहब किसी नरक पे विश्वास भी नहीं रखते.
He used that image to communicate his feeling.
लेकिन उस प्रतिमा को, उस शब्द को उन्होंने संवादित रूप से इस्तेमाल किया.
This is the way we can communicate something richer, something deeper.
इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कोई अगर भारी बात या कोई बहुत बड़ी बात हमें बतानी हो.
You know, a zoologist could describe an eagle to us.
अब मान लीजिए कोई अगर प्राणी शास्त्रज्ञ जो है वो बताएगा ये पंछी या गरुड़ कैसे होता है.
He said, it's a feathered biped of the genus Aquila. हिंदी में. A feathered biped of the genus Aquila. Feathered, has feathers, biped, two legs.
Okay. ऐसा हम कह सकते हैं कि यह कोई विजेता है जिसको दो पैर हैं और दो पर है.
Of the genus of the family Aguila, that's the name of the family.
तो Aguila यह है इस उनकी फैमिली है जो बर्ड की जो अलग अलग फैमिली होती है Aguila यहाँ से यह पंछी आता है.
But it doesn't really tell us what a magnificent bird the eagle is.
तो अब इस तरीके से अगर उसके ऊपर और पैर बताए और उसकी फैमिली बताए इससे अपने को समाधित नहीं होता कि किस तरीके का पंछी है.
You know, when somebody said a feathered biped of the genus Aquila, we go, oh, boring.
अगर कोई बताए या ऐसा पंछी है जिसको दो पैर है, दो पंछी है, इसका अगला फैमिली है वगैरह वगैरह.
But when we speak of the bird in poetic terms, well, we really feel what it's like to be that bird.
लेकिन अगर किसी ने काव्यात्मक रूप से इसको बताया कि यह पंछी कैसा है तो हमें महसूस होता है कि यह ऐसा पंछी है.
And in Buddhism, we speak this poetic language as well as the historical and factual language.
तो बौद्ध धर्म में हम काव्यात्मक रूप से भी सत्य को बताने की कोशिश करते हैं जैसे हम ऐतिहासिक सत्य को समझते हैं.
It's very interesting. Bala Sahib was very, very aware of this aspect of communication.
यह बहुत रुचकर है जानना कि बाबा साहब भी इन रूपों का इस्तेमाल करते थे इतिहास में.
Maitri here was just reminding me that in a recently published volume of his work, there's a list of the books that he intended to write.
मैत्री ने मुझे अभी अभी बताया था कि बाबा साहब के जो अभी अभी कुछ प्रकाशित हुए किताब उस एक पुस्तक के पीछे बाबा साहब ने जो क्या कह सकते हैं योजना की थी किताबों को लिखने की उसकी बीच से.
And he wanted to write a number of books on the theme of iconography, of images and poetic symbol.
और उसमें बाबा साहब ने यह योजना की थी कि जो प्रतीक है प्रतीकों के बारे में बाबा साहब कुछ लिखना चाहते थे.
So we can get close to the Buddha by using these poetic images.
तो इस तरीके से जो काव्यात्मक रूपक है इससे हम उनके करीब आ सकते हैं.
You need to listen with a poetic ear.
आपको एक कवि के कानों से भी सुनना है.
Now, you know, this morning we did that Qigong exercise.
अब मान लीजिए आज की सुबह हमने चिकोंग का अभ्यास किया.
And that exercise we do is called standing like a tree.
अब इस अभ्यास को हम कहते हैं कि पेड़ के जैसा ऐसे खड़े होना.
So you feel as if you're a tree.
ऐसा आप महसूस करते हैं कि मानो आप एक पेड़ है.
But you're not really a tree.
लेकिन मैं यहाँ पेड़ नहीं हूँ.
Where are where's your leaves?
तो मेरे जो पत्ते हैं वो कहाँ हैं?
But it doesn't matter. You feel like a tree.
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता. आप महसूस करते हैं कि मैं एक पेड़ हूँ.
You feel very deeply rooted into the ground.
आप महसूस करते हैं कि मेरे जो पैर हैं जमीन में बहुत ही गहरे हैं.
You feel very strong, like a trunk of a tree.
जैसे वो उसका यानी क्या कह सकते हैं उसका जो बेस है उसकी जो बुनियाद है पेड़ की उतनी मजबूती आप महसूस कर सकते हैं.
But at the same time, a tree is very flexible. It can flow with the wind.
लेकिन आपने पेड़ को देखा होगा ये मजबूत भी है और वैसे वो हिलता भी है.
So through the image of the tree, we can communicate that something that ordinary words cannot communicate.
तो इन प्रतीक प्रतीकों से हम समझ पाते किसी गहरे अर्थ को जो भौतिकता भौतिक शब्द में हम नहीं बता पाते.
So when you're listening to what I'm going to say now, don't take me literally.
तो अभी आप जो मुझे सुनने जा रहे हैं तो उसको क्या कह सकते हैं वास्तविक रूप से मत समझिए.
It's a metaphor, rupak.
यह एक रूपकात्मक भाषा है.
And it's a way of communicating something that ordinary words cannot capture.
यह एक ऐसे रूपक है जिसमें यह जो दैनंदिन या भौतिक जो दुनिया है उसे नहीं समझ पाएगी.
So what we could say is that the Buddha's mind is like a mandala.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्ध का जो मन है वो इस मंडल के जैसा है.
In other words, a harmonious arrangement of different elements.
ऐसा हम कह सकते हैं कि अलग अलग तत्वों का एक सुसंवादित मंडल.
In a circle, it's very harmonious.
तो यह जो मंडल है यह बहुत ही सुसंवादित है.
When you see a circle, well, there's a certain sort of calmness, a certain completeness to it.
जब हम किसी वर्तुल को या किसी गोल को देखते हैं तो पूरी तरह पूर्णता की जो भावना है वो हम समझते हैं.
And in a mandala like you get with a stupa, all the different elements on the stupa are arranged in balance.
तो अगर आप किसी स्तूप को देखते हैं तो उसमें जो कुछ भी प्रतीक है वह एक बैलेंस बैलेंस को क्या कहते हैं हाँ संतुलित रूपकों से वह है.
So this element is balanced with that element.
तो यह जो तत्व है यह इस तत्व के साथ संतुलित है.
This element with that element.
यह तत्व इस तत्व के साथ संतुलित है.
And all together they're complete, they're full.
और यह अपने आप में पूर्ण है.
Nothing is missing.
कोई भी बात यहाँ से छूट नहीं रही है.
So in the mandala of the five Buddhas, we see five figures arranged at the points of the compass.
तो हम इस पांच मंडल में पांच बुद्ध के प्रतीक देते हैं, रूप देते हैं.
We see one in the north, one in the south.
हम एक उत्तर में देखते हैं, हम एक दक्षिण में देखते हैं.
One in the east, one in the west.
एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है.
One in the center.
और एक मध्य में है.
So just to see those five figures arranged like that is to feel some degree of harmony, of balance, of completeness.
तो यह पांच बुद्धों को अपने आप में देखकर एक अप्रतिम सुसंवाद और पूर्णता की भावना हमें आती है.
Then each of those figures has a different gesture.
लेकिन हर जो मूर्ति है या प्रतीक है इसके अलग अलग मुद्राएं हैं.
You know, Bhumi Sparsha, Dhyana, Abhaya, and so on.
आपको पता होगा भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा.
And each of those communicates something else about the Buddha.
और यह जो मुद्राएं हैं वह अपने आप में हमसे कुछ संवाद करना चाहती है.
Then each figure is a different color.
और हर प्रतिमा का अलग अलग रंग है.
Because colors communicate.
क्योंकि रंग भी हमें कुछ बताता है.
Some colors are very calming, like blue is very calming.
कुछ रंग ऐसे होते हैं जैसा नीला रंग बहुत ही शांत है, गहरा है.
Red is very stimulating.
तो यह जो लाल है यह बहुत उत्तेजित है.
White gives you a feeling of purity.
और यह जो सफेद जो है यह हमें पवित्रता का उदाहरण देता है.
So colors communicate feeling.
तो यह जो रंग है यह आपके भावनाओं के साथ भावनाओं को दर्शाते हैं.
Each of these figures is associated with a different time of day.
और
different time of
day.
Yeah.
हर प्रतिमा भी है वो अलग अलग जो समय है दिन का उस समय को भी दर्शाता है.
And each of them is associated with a different animal.
और प्रत्येक बुद्ध का जो प्रतीक है या प्रतिमा है यह विभिन्न प्राणी गुणों से भी संबंधित है.
And each of them is associated with a particular wisdom.
और इसमें से हर प्रतिमा एक विशेष प्रज्ञा के साथ इसका संबंध है.
The Buddha has all these wisdoms, but they're represented separately.
बुद्ध के पास यह सभी प्रज्ञाएं हैं, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व अलग अलग दिखाया गया है.
So when we understand them all together, we begin to get closer to the Buddha.
जब हम इन सारी चीजों को सुसंवादित रूप से समझते हैं तब हम बुद्ध के ज्यादा करीब जाते हैं.
So as I speak, I invite you just to allow these images to work upon you.
तो मैं अभी इन प्रतिमाओं के बारे में आपके साथ बात करूंगा.
Now, could say immediately that the Mahabodhi temple itself is a giant mandala.
मैं यह कहूंगा कि यह महाबोधि जो मंदिर है यह अपने आप में एक पूर्ण मंडल है.
You see it square.
आपने देखा यह चतुर्भुजाओं से चौकोर जैसा है.
And the शिखर it's in the center.
और जो इसका शिखर है यह शिखर बिल्कुल वो जो चौकोर है उसके बीचों बीच आता है.
And then there are four small शिखर.
और उस मंदिर के चारों ओर चार छोटे छोटे शिखर. शिखर यानी मंदिर का ऊपरी हिस्सा.
So the Mahabodhi temple itself is intended as an image of the Buddha's completeness.
तो यह महाबोधि जो मंदिर है यह अपने आप में बुद्ध के मन का पूरा प्रतिबिंब है, प्रतीक है.
Now, when you have a mandala, traditionally you always approach it from the east.
तो पारंपरिक रूप से अगर हम मंडल को समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम पूर्व दिशा से इसकी शुरुआत करते हैं.
And you approach the Mahabodhi temple from the east.
और आपने यह देखा होगा कि पूर्व दिशा से ही आप महाबोधि में प्रवेश करते हैं.
We come down those long steps and straight towards the Vihara.
हम उस जो सीढ़िया है सीढ़िया उतर के हम सीधे मंदिर की तरफ चले जाते हैं.
Because the Buddha was sitting under the Bodhi tree looking towards the east as the morning star rose.
क्योंकि बुद्ध जब बुद्धत्व की संबोधि की प्राप्ति के लिए ध्यान में बैठे थे तो उनका जो मुंह था वह पूर्व दिशा से था, मानो जैसे किसी तारक सुबह के तारे को देख रहे हो.
So we start from the east where the sun rises.
तो हम पूर्व से इसकी शुरुआत करते हैं जहाँ से सूर्योदय होता है.
Well, the each time of day has its own special quality, doesn't it?
Each time of day?
Yes.
Yeah. तो दिन का जो अलग अलग समय है इसका अपने आप में एक महत्व है.
You know that in Indian musical theory, each time of day is associated with different ragas.
भारतीय संगीत सिद्धांतों में भारतीय जो राग है यह दिन के अलग अलग समय में अलग अलग राग गाते हैं.
Because each time of day has its own sort of feeling.
क्योंकि दिन में अलग अलग समय हमारी अलग अलग भावनाएं होती है.
So what is the feeling of dawn? What is the feeling of the sun rising?
तो जब सूरज निकलता है या सूर्योदय होते रहता है तब की हमारी भावना कैसी होती है?
Well, there are many aspects of this.
अब निश्चित रूप से इसके कई आयाम हैं.
First of all, of course, there's a great feeling of stillness, of peace.
निश्चित रूप से इसके सबसे पहली भावना जो होती है यह शांत स्वस्थ
Because many people are still sleeping, the day hasn't really begun.
क्योंकि हम स्थिरता का अनुभव करते हैं, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग जाग जाते हैं.
But there's a feeling of everything waking up.
लेकिन तब भावना होती है कुछ तो भी जाग रहा है.
In England, do you have a wonderful something wonderful happens as the sun comes up?
जब इंग्लैंड में ऐसा होता है जब सूरज आता है तो कुछ तो भी अच्छी बात हो रही है ऐसा लोग सोचते हैं.
All the birds start singing.
सारे जो पशु पंछी है वह अपना राग अलापते हैं, गाना गाते हैं.
It's what we call the dawn chorus.
इसको हम कहते हैं सुबह का राग.
And when you're waking up and you hear the birds singing in the spring and early summer, really beautiful.
अब आप देखते हैं कि ऐसे सुबह सुबह जब पंछी गाते हैं तो कितना सुंदर हमें लगता है.
And it's still quite cool in India.
और भारत में अभी भी सुबह जो है वह ठंडी होती है.
In England it's cold.
क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ही ठंडी है.
But yes, it's a beautiful time of day, very pure, very still, a sort of joy as the sun rises.
जैसे सन निकलता है, सूरज निकलता है तो हमें बहुत ही आनंद होता है, एक स्थिरता की तेजस्वी की भावना हमारे मन में होती है.
And we're told that this is a time when the Buddha gained enlightenment.
और ऐसा हमें बताया गया है या हमें ज्ञात है कि ऐसे ही वक्त बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई.
So today we're dealing with the Buddha as represented by the eastern quarter.
So,
eastern side, eastern quarter of the mandala.
So, यह जो मंडल है, इस मंडल की पूर्व दिशा को मानो बुद्ध भी प्रतिनिधित्व कर रहे, उसको represent कर रहे.
And we see the Buddha sitting in Bhumisparsha Mudra.
और हम देखते हैं कि तब इस अवस्था में बुद्ध जो बैठे हैं वे भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं.
If you look inside the main temple, you'll see the Buddha sitting there in Bhumisparsha Mudra.
जब आप बिल्कुल मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब आप बुद्ध को देखते हैं कि वे भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं।
So what does that mean?
अब इसका अर्थ क्या है?
Well, first of all, see for yourselves.
अब सबसे पहले आप अपने लिए सोचिए।
Touch the ground.
अब आप जमीन का स्पर्श कीजिए।
What do you feel when you do that?
अगर आप जमीन को स्पर्श करते हैं तो आपको कैसे लगता है?
When you tap the ground, what do you feel?
जब आप जमीन को स्पर्श करते हैं आपको कैसे लगता है?
Well, I imagine I could ask you all, but I won't do that. I imagine that what you'll feel is firm, steady, stable.
आपने को हमें एक स्थिरता की, एक मजबूती की और कुछ तो भी बात है इसकी इसकी भावना हमें आती है।
You're as if you're saying it can't move.
अगर आप इसको ठोक के देखेंगे तो ये हिलती नहीं है।
I'm still, I'm stable.
अचल है, स्थिर है।
So we're told traditionally that the Buddha said this when Mara, or did this when Mara attacked.
ऐसा हमें ज्ञात है परंपराओं से कि बुद्ध ने भूमि का स्पर्श किया जब मार की सेना उन पे चल गया।
Well, we know Mara, it represents all the negative forces of the mind.
अब मार का यहाँ अर्थ यह है कि हमारे मन की सारी नकारात्मक शक्तियाँ।
So when all those negative forces arose in the Buddha's mind, he just remained firm.
इसका अर्थ यह हुआ कि जब उनके मन में यह नकारात्मक शक्तियों का मार हुआ तो वह स्थिर रहे, अचल रहे।
He called the earth to witness.
और उन्होंने कहा कि यह धरती जो है यह इसकी साक्ष्य है।
He said, I've got perfect right to sit here under the Bodhi tree.
उन्होंने यह कहा कि मेरा यह पूरा अधिकार है इस बोधि वृक्ष के नीचे या इस वृक्ष के नीचे बैठने का।
Everything I've done in my life has led up to this moment.
जो कुछ भी मैंने अभी तक के सारे जीवन में जो किया वो मुझे इस क्षण पे भी लेके आया है।
I've created the karmic basis to sit here.
मैंने कर्म का ऐसी एक कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि बनाई कि इसके ऊपर मैं अभी बैठा हूँ।
So it's a gesture that expresses complete confidence.
तो यह दर्शाता है कि उनके अंदर एक पूरा आत्मविश्वास था।
Not a trace of doubt in the Buddha's mind.
इतना सा भी संदेह बुद्ध के मन में नहीं था।
He knows that he will gain enlightenment.
उनको पता था कि मैं संबोधि की प्राप्ति करूंगा।
He knows that nothing can disturb him.
वह जानते थे कि कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं करेगी।
He knows that what he's seen, he has seen.
वह देखते थे कि जो मैंने देखा वह सही है, सही मायने में मैंने इसे देखा।
He knows that nothing in reality can shift or disturb him.
उनको पता था कि वास्तविक रूप से कोई भी चीज मुझे यहाँ से हिला नहीं सकती या मुझे बदल नहीं सकती।
So you see, just that one gesture gets us very close to the Buddha.
अब देखिए, ये केवल एक जो मुद्रा है यह बुद्ध के कितने करीब हमें पहुँचाती है।
The Buddha has complete confidence.
बुद्ध के पास संपूर्ण एक आत्मविश्वास था।
But not arrogant.
लेकिन वे क्या कह सकते हैं कि गुस्से में नहीं थे या
When you're arrogant, you believe you're better than you are.
जब हम अहंकारी होते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि मैं औरों से अच्छा हूँ।
But the Buddha knows that what he's seeing is the truth.
लेकिन बुद्ध यह जानते थे कि जो मैं देख रहा हूँ यह सत्य है।
So it's a calm, it's a humble confidence.
तो यह एक शांत और उतना ही विनम्र आत्मविश्वास था।
Nothing can shift it, nothing can shake it.
कोई भी बात इनको हिला नहीं सकती थी, कोई भी बात उनको यानी अविचलित कर नहीं सकती।
It's a confidence that's beyond comparison.
यह एक ऐसा विश्वास है जिसकी तुलना शायद नहीं हो सकती।
The Buddha isn't saying, I'm better than you.
बुद्ध यहाँ ऐसा नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपसे अच्छा हूँ।
He's saying, here I sit and I will not move.
बुद्ध ऐसा कह रहे हैं कि मैं यहाँ अभी बैठा हूँ और मैं यहाँ से अभी हटूंगा नहीं।
Nothing can shift me.
कोई भी बात मुझे विचलित नहीं कर सकती।
So it's a very, very wonderful sort of confidence.
तो यह बहुत ही ऐसा अप्रतिम आश्चर्यकारक ऐसा आत्मविश्वास था।
It's a confidence that cannot be lost.
यह एक ऐसा आत्मविश्वास था जो कभी भी जाएगा नहीं या दूर नहीं होगा।
And when we see the Buddha in this form, he's usually blue in color.
और जब हम बुद्ध को इस प्रतीक में देखते हैं, तो बुद्ध हमें नीले रंग के दिखते हैं.
Well, that blue color, that deep blue color, very very calm, very soothing.
यह जो गहरा नीला रंग है यह बहुत ही शांत और गहन है.
When I was a young man, I worked for a while in a psychiatric clinic.
मैं जब जवान था, युवा था, तब मैं एक मनोवैज्ञानिक अस्पताल में काम कर रहा था.
And it was well known that if you wanted to calm somebody down, you put them in a blue room.
तो मैं यह जानता था कि अगर कोई मानसिक रूप से विचलित है, उसे शांत करना है, तो हम उसे नीले रूम में रखते थे.
So you just sit in that blue room and you feel a little bit calmer.
अगर आप उस रूम में आप रहते हैं, तो आपको थोड़ा शांति महसूस होती है.
So that blue color represents the calmness, the steadiness of the Buddha in this eastern quarter.
तो यह जो नीला रंग है, यह जो पूर्व का जो एक चौकोन है उस मंडल का, उसमें शांति का प्रतीक है.
He holds in his right hand, his left hand, a golden vajra.
उनका जो बाया हाथ है, उस बाया हाथ में सोनेरी वज्र है, सोने का वज्र है.
You'll see some of these vajras down at the Mahabodhi temple.
अब आप मंदिर के आसपास जाते हैं तो लोग वहाँ वज्र बेचते हैं, आपने देखे होंगे.
I haven't time to describe them now.
अब मुझे उसको विश्लेषण रूप में बताने का समय नहीं है.
But these vajras are symbolic thunderbolts.
लेकिन यह एक अचल सत्य का ऐसा थंडरबोल्ट को क्या कहते हैं कि
लाइटनिंग बोल्ट,
बहुत ही तेजस्वी ऐसा कोई यंत्र है जो सत्य का है.
So the ancient people believed that when there was lightning, some sort of bolt of very hard metal came down.
ऐसा कहते हैं कि जैसे बुद्ध संबोधि की प्राप्ति कर रहे थे तो बहुत ही यानी बिजली कड़की और कुछ तो भी ऐसा मेटल जो है वो गिर गया.
And they believed that this was indestructible.
और वो कहते हैं कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता था.
Just imagine, you don't know anything about meteorology, you don't know anything about the way the weather works.
अब आपको किसी भी यानी जो धातु होता है, धातु ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा यह अचल धातु का बोला था जो गिर गया.
And you hear a tremendous thunderclap in the sky.
और उससे बहुत ही विशाल ऐसा आवाज हुआ आसमान में.
And you see a streak of lightning come down.
और आपने देखा कि यह जो बिजली है यह सीधी एक लाइन में दिख रही है.
You will feel a tremendous sort of awe and wonder.
और ऐसे वक्त हम बहुत ही आश्चर्यकारक ऐसा अनुभव करते हैं.
So it was believed that the thunderbolt was something irresistible.
और ऐसा कहते हैं कि यह जो एक धातु का जो यंत्र था या गोला था, इसको कोई भी रोक नहीं सकता.
So it's as if the Buddha's mind is like that.
तो ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का मन है वह वैसा है.
Nothing can destroy it.
कोई भी बात उसको विचलित नहीं कर सकती.
Nothing resists its understanding.
और इसकी जो समझ है उसे कोई भी रोक नहीं सकता.
Then finally, the Buddha in the eastern quarter is associated with an elephant.
तो यह जो पूर्वी जो चकोर है इसका अर्थ हाथी से भी है.
So, what is an elephant like?
अब यहाँ इसका प्रतीक जो प्राणी है वह हाथी क्यों है?
I remember when I was a child going to a circus and first seeing an elephant.
मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था सर्कस में गया था हाथी को देखने के लिए.
Because we don't have elephants in England.
क्योंकि इंग्लैंड में हाथी नहीं है.
You can only see them in zoos or in the circus.
आप इसे केवल प्राणी संग्रहालय में या सर्कस में देखते हैं.
But here you have them. Well, I've even seen them in Mumbai, in the streets in Mumbai.
लेकिन मैंने मुंबई के रास्तों में हाथी देखे.
And well, they're wonderful creatures, aren't they?
बहुत ही सुंदर ऐसा यह प्राणी है क्या?
There's something so magnificent about an elephant.
कुछ तो भी ऐसी भारी भक्कम बात लगती है जब हम हाथी को देखते हैं.
They're very stately, very dignified.
वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, पूरी तरह प्रतिष्ठित है ऐसा लगता है.
And if they're walking somewhere, they're really walking there.
अगर वो कहीं चलते हैं तो सही मायने में वो वहां चलते हैं.
And you won't easily stop them.
और आप उनको अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं सकते.
And they walk with tremendous sort of dignity and purpose.
तो इस तरीके से वो पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ चलते हैं.
And yes, so they become a symbol for this kind of steadfastness, this kind of immovability.
तो एक अविचलता का यह एक प्रतीक के रूप में हाथी उभर के आया.
So this is the Buddha of the Eastern Quarter.
तो यह बुद्ध है इस मंडल के पूर्वी भाग में.
He's sitting in the east where the sun rises.
वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ सूर्योदय हो रहा है.
He's deep blue in color.
वह पूरी तरह नीले रंग के है.
He's touching the earth.
वह भूमि स्पर्श मुद्रा में है.
He's associated with the thunderbolt.
वे एक वज्र के साथ वो जुड़े हुए हैं.
He's associated with the elephant.
और इनका प्रतीकात्मक प्राणी यहाँ हाथी है.
So it's an image of great confidence.
तो यह प्रतीक है पूर्ण आत्मविश्वास का.
It's a symbol of a calm that can never be disturbed.
यह ऐसी शांति है जो कभी भी विचलित नहीं हो सकती.
So the Buddha knows that he's understood the nature of things.
तो इसका अर्थ है कि बुद्ध ने चीजों के अस्तित्व को उनके स्वभाव को समझा है जाना.
He knows that every action he performs is skillful.
वह जानते हैं कि वह कोई भी अगर कार्य या कर्म कर रहे वह कुशल है.
He knows that there's nothing with which he can be reproached. With which people complain him for.
ऐसा कोई भी कार्य या कर्म या कृति बुद्ध करते नहीं है ताकि लोग उनको दोषी कहे या दोष दे.
So nobody can say something to him which will catch him out, will make him feel guilty.
ऐसी कोई भी बात बुद्ध को कोई कह नहीं सकता जिससे वह अपने आप को अपराधीपन की भावना या वैसे वह महसूस करे.
The Buddha is in harmony with the way life really is.
जिस तरीके से जीवन है इसके द्वारा बुद्ध पूरी तरह सुसमाधित है.
Then the Buddha is supremely calm.
और बुद्ध एक अप्रतिम रूप से शांत है.
He's broken free from all inner turmoil.
अंदर के जो उनके द्वंद्व है इससे वह पूरी तरह मुक्त है.
You know what our minds are like.
आपको पता है हमारे मन कैसे होते हैं.
They're a bit like the ocean.
यह मान लीजिए समुद्र जैसा है.
A little bit of wind and they get whipped up. Waves come crashing down.
अगर थोड़ी सी भी हवा आ गई तो पानी हिल जाता है.
So our minds are unstable.
तो हमारा मन जो है यह अस्थिर है.
They're very easily affected by events outside us, by events inside us.
हमारे बाहर जो घटनाएं हो रही है या हमारे अंदर जो घटना हो रही है इससे हम विचलित हो जाते हैं.
So we're up, we're down, we're up, we're down.
तो हम कभी उत्साही होते हैं, कभी निरुत्साही होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं.
We very easily react to other people.
बहुत आसानी से हम किसी को एक प्रतिक्रिया दे देते हैं.
And whatever life brings to us, we react to it.
जो भी जिंदगी हमें देती है उससे हम प्रतिरोधित होते हैं या उससे प्रतिकारित होते हैं.
If people praise us, we're so happy.
अगर लोग हमारी तारीफ कर देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं.
If people speak badly of us, we're so down.
अगर लोगों ने हमें दोष दिया या बुरा कहा तो हम नीचे चले जाते हैं.
If we're successful, we're so happy.
अगर हम कामयाब हैं तो हम बहुत खुश होते हैं.
If we fail, we're down.
अगर हम नाकामयाब होते हैं तो हमें नाराजगी होती है.
If people speak as us with as if we're innocent, we feel good.
अगर लोगों को लगता है कि यह बहुत मासूम है तो हमें अच्छा लगता है.
If they blame us, we feel bad.
अगर वो हमें दोष देते हैं तो हमें बुरा लगता है.
So up, down with the worldly winds.
तो संसार के इन लहरों से हम हमेशा ही विचलित होते रहते हैं.
The world is always blowing on us.
तो यह जो संसार है इसकी जो लहरें हैं ये हमेशा ही हमें प्रभावित करते रहती है.
You know, one day people give you flowers.
एक दिन लोग आपको फूल देंगे.
The next day they throw stones at you.
और हो सकता है दूसरे दिन वो आपको पत्थर मारे.
When you get a flower, know that there's a stone coming.
अब आप इसको जानिए कि जब आप लोग आपको फूल देंगे तो पत्थर भी आ सकता है.
And when there's a stone comes, remember there's a flower coming.
और मान लीजिए अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है तो ये भी जानिए कि कभी फूल भी आएगा.
And it can be strange because sometimes a flower actually is a stone.
लेकिन कभी कभी हम संभ्रमित में हो जाते हैं कि जो हम फूल समझते हैं वो पत्थर हो जाता है.
But so the Buddha is unmoved.
लेकिन बुद्ध इन सब चीजों से परे है, अविचलित है.
You say to the Buddha, oh Buddha, you are the most wonderful being that's ever lived.
अगर आप बुद्ध को ऐसा कहते हैं कि ओ बुद्ध आप इस धरती के सबसे सुंदर पुरुष हैं,
he says, ठीक है,
बुद्ध बोलेंगे ठीक है,
meditate,
बोलेंगे ध्यान करो,
you say to the Buddha, who are you? You're rubbish, you're nothing.
अगर आप बुद्ध को कहते हैं कि आप कौन है, आप में क्या है, आप कुछ भी नहीं है,
so he says, ठीक है, meditate,
बुद्ध बोलेंगे ठीक है, फिर भी ध्यान करो.
So the Buddha is unmoved.
तो इस तरीके से बुद्ध अचल.
Whatever happens to him, nothing bothers him.
कुछ भी उनके साथ अगर होता है, तो वो विचलित नहीं होते.
So he's destroyed those forces in the mind that make this sort of reactivity.
तो उन्होंने अपने मन के अंदर उन सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट किया जो विचलित करती है.
He's destroyed what are called the kleshas.
जो क्लेश है, उन क्लेशों को उन्होंने नष्ट किया.
The kleshas are the sort of mental poisons, the disturbing influences that lie at the bottom of our minds.
तो क्लेश जो है, यह एक तरीके के मानसिक विकार है, मानसिक विष है, जो हमें हमेशा ही विचलित करते रहते हैं.
There are many lists of kleshas, but I'm going to talk to you about six.
ऐसे बहुत सारे क्लेश है, लेकिन मैं केवल छह क्लेशों के बारे में बात करूंगा.
So there's raga.
तो मान लीजिए पहला क्लेश है राग.
That's craving, longing.
वो बहुत ही गहरा होता है, लंबा होता है.
That's where your heart is not at peace. You want something that you haven't got.
यह ऐसी भावना है जो आपको नहीं मिली हो और आप कुछ पाना चाहते हो.
You see something, you want it.
कुछ भी चीज अगर आप देते हैं तो आपको मुझे चाहिए ऐसा आप सोचते हैं.
It torments your mind.
यह आपके मन को विचलित करता है.
I want, I want, I want.
मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए.
And of course people can kill for this.
और इसके लिए लोग दूसरों की हिंसाएं भी करते हैं.
They can harm others for this.
और इसके लिए वो दूसरों को हिंसाएं पहुंचाते हैं.
They can harm themselves to get what they crave.
जिसके लिए यह राग है, उसके लिए वे स्वयं को भी हिंसा देते हैं.
Then this द्वेष.
अब यह है द्वेष.
That's where you believe that somebody else is the cause of all your problems.
आपको ऐसे लगता है कि यह व्यक्ति है, इसके कारण मुझे सारी समस्याएं हो रही है.
And you want to harm them, you want to destroy them.
अब उनको आप तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उनको आप हिंसा देना चाहते हैं.
This is द्वेष.
यह है द्वेष.
Then there's mana.
मान. अब यह है मान.
That means pride.
यह अहंकार.
It's where you think I'm special.
आपको ऐसा लगता है कि मैं विशेष हूँ.
I'm the greatest. I'm the best.
मैं सबसे बेस्ट हूँ. मैं सबसे महान हूँ.
You're nothing.
आप क्या है? आप कुछ भी नहीं है.
No, you're nothing. It's that sort of puffed up.
तो इस तरीके का कोई तो भी बात आपको कोई तो भी कहता है कि आप कुछ भी नहीं है.
So this mana is a constant affliction in our minds.
तो यह जो मान है यह हमेशा ही अपने मन को विचलित करता है.
Then there's moha.
अब है
moha.
यह है मोह.
That means ignorance.
इसका अर्थ है अज्ञान.
We just don't see things clearly.
हम चीजों को स्पष्ट रूप से देखते नहीं है.
We don't really clarify what is there.
जो चीजें हम देख रहे हैं उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं होते.
Then there's vichikitsa.
अब दूसरा है विचिकित्सा.
That means doubt.
इसका अर्थ है संदेह.
Where you just can't make up your mind.
इसका अर्थ यह है कि आप शक में होते या संदेह में होते, अपने मन को आप देख नहीं पाते.
And then finally there's the sixth klesha, which is called drishti or mithya drishti.
और जो छठा क्लेश है यह है मिथ्या दृष्टि.
That means wrong ideas.
इसका अर्थ है wrong ideas है, गलत कल्पना या अनुचित कल्पना है.
So this gang of six kleshas are there at the bottom of our minds.
तो इस तरीके से जो छह क्लेश है यह हमारे मन में बैठे हुए हैं.
Outside events stir them up.
और बाहर की जो घटनाएं हैं उनको वो हिला देती है.
So we see a neighbor has got a bigger motorbike than us.
और हम अपना पड़ोसी देखते हैं बहुत बड़ी मोटरसाइकिल के साथ.
That gets at our pride.
अब इससे हमारा जो अहं है वो दुख जाता है.
That gets at our craving. That gets at our hatred.
So
our minds are stirred up. Our minds go into turmoil. This doesn't happen to the Buddha.
यह बुद्ध के साथ नहीं होता।
He's got rid of the kleshas.
वो क्लेशों से मुक्त है।
And that's what we're trying to do through our spiritual practice.
हमारे आध्यात्मिक आचरण से भी हम वही करने की कोशिश करते हैं।
All the evil in the world comes from these kleshas.
सारी दुनिया में जो बुराइयां हैं, वो इन क्लेशों से आती है।
All the injustice of this social system comes from the kleshas.
यह सामाजिक रचना का जो अन्याय है, यह अन्याय भी इन क्लेशों से आता है।
Caste is mixed up with these six kleshas.
यह जो जाति है, इन छह क्लेशों से भरी है।
Because it's to do with craving. I want for me and my people.
क्योंकि यह लोभ से भरी है, मैं यह चाहता हूँ मेरे जाति के लोगों के लिए मैं यह चाहता हूँ।
It's to do with hatred.
या इसका संबंध द्वेष से।
I don't care what they want. I want to just push them down.
उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है कि इनको क्या चाहिए, बस मैं इनको दबाना चाहता हूँ।
It's to do with pride.
यह अहंकार से संबंध है इसका।
My caste is best.
मेरी जो जाति है वह सर्वश्रेष्ठ है।
It's to do with ignorance.
यह अज्ञान से इसका संबंध है।
Because you believe that caste really exists.
क्योंकि आप यह मान के चल लेते हैं कि जाति का कोई ऐसा अस्तित्व है।
So in something like caste, all these kleshas are at work.
तो यह जातियां है, यह जो पूरे क्लेशों से भरी है।
This is why Baba Sahib we need the Dhamma to get them out of our minds.
इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमें धम्म की आवश्यकता है यह सब क्लेशों से मुक्त होने के लिए।
And we do that first of all by working directly on our minds, especially through meditation.
हम यह करते हैं अपने ध्यान के अभ्यास से इन क्लेशों से मुक्त होने का हम रास्ता खोजते हैं।
This morning we were doing the Anapanasati.
आज की सुबह हम आनापान सति ध्यान का अभ्यास कर रहे थे।
I hope at least some of you will have had some experience of calm.
मुझे इसका विश्वास है कि कुछ लोगों को कुछ हद तक शांति का अनुभव हुआ होगा।
You will have found that your mind is sort of settling down.
आपने देखा होगा कि आपका जो मन है वह शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है।
For a little while, the kleshas are not there.
अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वहाँ क्लेश नहीं है।
But when you do the Maitri Bhavana, well, you'll be developing a positive feeling, which is the opposite of the kleshas.
जब आप मैत्री भावना करते हैं, तो आप मैत्री का विकास करते हैं क्लेशों के भावना से विरुद्ध।
So to begin with, our meditation is about, well, calming the kleshas.
तो हम ध्यान की शुरुआत इसी से करते हैं कि मानो हम क्लेशों को शांत कर रहे हो।
But then we move on to another phase of meditation.
लेकिन उसके पश्चात हम दूसरे स्तर पर जाते हैं अपने ध्यान के।
The first phase is known as shamatha, which means calm or quiet.
पहला जो उसका पड़ाव है उसे हम समता कहते हैं, जिसका
shamatha, use the Sanskrit. Yes.
क्षमता, इस क्षमता को हम शांति से इसका संबंध है।
And then we move on to vipassana, the Sanskrit.
क्षमता से हम फिर आगे स्तर पर जाते हैं विपश्यना।
Vipassana means the rooting out right at the base of those kleshas.
तो विपश्यना का अर्थ यह है कि इन क्लेशों को हम जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं।
With vipassana we see the way life really is.
विपश्यना से हम देखने की कोशिश करते हैं कि जीवन जैसा है वैसा।
So the kleshas cannot exist.
ताकि क्लेशों का वहाँ अस्तित्व ही ना रहे।
We cannot crave because there's nothing fixed and permanent to hang on to.
हम किसी भी चीज का लोभ नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज नित्य टिकने वाली नहीं है जो हमारे साथ हमेशा रहे।
So the second phase of meditation is to do with getting rid of the kleshas altogether.
तो दूसरा जो स्तर है ध्यान का वह क्लेशों से मुक्ति का है।
And we do that by trying to see the real nature of this life around us.
और वह हम देखने की कोशिश करते हैं क्लेशों से मुक्त होकर जीवन का जैसा स्वभाव है वह देखें।
So our whole Buddhist training brings us close to this Buddha of the Eastern Quarter.
तो यह जो सारे गुण है, यह पूर्व में जो बुद्ध है वहाँ पे उस मंडल के जो बुद्ध है उनको करीब से समझने की हम कोशिश करें।
I hope that as this retreat goes on, you'll experience something of that calm that the Buddha of the Eastern Quarter has.
तो इस तरीके से जो पूर्व दिशा में जो बुद्ध है, वो उनका अर्थ इस शिविरों में हम जानने की कोशिश करेंगे.
And you'll gradually become closer, come closer and closer to the Buddha himself.
और हम धीरे-धीरे बुद्ध के करीब-करीब आने की कोशिश करेंगे.
So there's just one more aspect of the Buddha of the Eastern Quarter I want to mention.
तो एक और एक आयाम है जो पूर्व में बुद्ध है उनसे जुड़ा हुआ जो मैं बताना चाहूंगा.
This blue Buddha has a wisdom.
यह जो नीले बुद्ध है इनकी एक विशेष प्रज्ञा है.
And his wisdom is known as the mirror like wisdom.
और इस प्रज्ञा को हम आईने की जैसी प्रज्ञा होती है वैसा कहते हैं.
It's the wisdom that is like a mirror.
यह प्रज्ञा है जो आईने के समान है.
What is a mirror like?
अब आप मानिए कि आईना कैसे होता है.
Well, a mirror just shows what's there.
आईना जो है यह आपको दर्शाता है आप जैसे हैं वैसे.
A mirror doesn't flatter you.
क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता.
You know, it's famous that when great people are painted, the painter always makes them a bit more beautiful than they really are.
अब आपको पता है कि कोई भी चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है तो वो जैसा है उससे थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करता है.
There was a famous English queen, Elizabeth the First, not this one we have now, but a famous one from many years ago.
बहुत सालों पहले इंग्लैंड की एक रानी थी एलिजाबेथ जिसका आपने नाम सुना था जो अभी है वो नहीं जो पहले जो थी वो.
And she died at the age of 65.
वह उम्र के 65 साल में उसका देहांत हो गया.
But all the pictures of her all the way through her life show her as a young woman of 25.
लेकिन सारे जो उसके चित्र हैं वह केवल 25 साल में जैसी जो सुंदर होती है वैसे ही उसके सारे चित्र हैं.
So all the pictures showed her as she wanted to be seen.
क्योंकि सारे जो चित्र हैं वैसे ही बनाए गए जैसा वो अपने आप को देखना चाहती थी.
But when she looked in the mirror, the mirror showed her as she really was.
लेकिन जब वो अपनी सूरत आईने में देखेगी तो आईना वही दर्शाएगा कैसी वो है.
Well, you imagine I go to the mirror.
अब आप कल्पना कीजिए मैं अगर आईने के सामने जाता हूँ.
And I've got this image that I've got wonderful long hair.
अब मैं ऐसी कल्पना करूंगा कि मेरे बहुत घने लंबे बाल हैं.
And I look in the mirror.
और मैं आईने में देखूंगा.
Where's it gone? It's gone.
मेरी जो कल्पना है मेरे लंबे घने बाल है मैं देखूंगा आईने में कहां चले गए.
The mirror does not lie.
क्योंकि आईना झूठ ना बोले.
The mirror just shows what's there.
आईना वही कहता है बिल्कुल जो है.
Whatever is there, the mirror reflects.
जो कुछ भी है उसी का प्रतिबिंब आईना दर्शाता है.
So this wisdom is like that.
तो यह जो प्रज्ञा है बुद्ध की वैसी ही है.
The Buddha has this kind of mirror-like wisdom.
इस तरीके की आईने की जो प्रज्ञा जैसी बुद्ध की प्रज्ञा है.
Most of the time when we look at things, we look at them with distorted eyes.
जब भी हम चीजों को देखते हैं तो एक विचलित दृष्टिकोण से हम देखते हैं.
We know that in India people look at things through caste eyes.
हमें पता है भारत में लोग एक दूसरे को जाति की आंख से देखते हैं.
They don't look at other people, they see caste members.
वे एक इंसान करके नहीं लेकिन एक किसी जाति समुदाय के वह सदस्य है ऐसा वह देखते हैं.
So we don't see what's really there.
हम यह नहीं देखते कि सही मायने में क्या है.
We look with a prejudiced mind.
हम एक पूर्व धारणा से पूर्वाग्रह से हम चीजों को देखते हैं.
Very often when we look at the world around us, we look at it to see what we want to see.
अक्सर हम इन धारणाओं से देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं.
You know, maybe in your neighborhood you've got an enemy.
मान लीजिए आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है.
There's somebody who lives near you you don't like.
आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति रह रहा है जिसे आप पसंद नहीं करते.
He or she really irritates you.
वो या आपको बहुत ही तकलीफ देता हो.
And then one day something's missing.
और कुछ तभी एक दिन मान लीजिए कुछ छूट जाता.
So immediately your mind thinks he's taken it.
अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप यही सोचते हैं कि इसी व्यक्ति ने मेरी ये चीज ली है.
You don't really look at the facts.
आप तथ्यों को देखते नहीं है.
You just assume what you want to assume.
आप वही मान के चलते हैं जो आप मानना चाहते हैं.
So you see all the bad qualities connected with the enemy.
तो आपका जो शत्रु है उसके
Of course, later on it turns out that that thing was just lost. Dropped it and lost it. But still you have that feeling that something to do with that person. So we're not seeing what's really there. We've already made up our minds. Well, there's the other side of the scale, isn't
there?
You know, you fall in love. But when you fall in love, you don't really see the other person. You see all sorts of wonderful qualities in them. And this, frankly, can be one of the disappointments of marriage, can't it?
disappointment of marriage.
You know, you thought he was so wonderful. And then after a while, he finished not like that at all. Or you thought she was so marvelous. Then you find she's not like that at all. And then you have to come to know each other as you really are.
तब फिर आप एक दूसरे के बारे में जैसे हैं वैसा आपको जानना ही पड़ता है.
And then some real friendship can develop.
तभी एक अच्छी या सच्ची दोस्ती हो सकती है.
So we don't see accurately.
तो हम क्या कहते हैं एक जो सही है जैसा है वैसा ही देखने की कोशिश करते हैं.
In England we say you look through rose-colored spectacles.
Rose-colored spectacles.
Yes.
अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं कि मान लो गुलाब से आपका आईना ढका हुआ हो और उस गुलाब के पंखुड़ियों से आप देखते
हैं. Everything's beautifully pink, lovely.
तो हर चीज आपको बहुत खूबसूरत दिखती है मस्त दिखती है.
Or you look through black spectacles.
या आप काले चश्मे से देखते हो.
So everything you look at is ugly.
तो हर चीज आपको कुरूप दिखती है खराब दिखती है.
So we need to see what is really there.
तो आपको देखने की आवश्यकता है कि सही या वास्तविक रूप से वहाँ क्या है.
This is the quality that the Buddha has.
तो यही गुण है बुद्ध का वो जो है वही देखते हैं.
Oh, for instance, very common thing in India. You know, somebody's telling me about a retreat.
अब ये बहुत सामान्य सी बात है अक्सर शिविरों के बारे में लोग मुझे बताते हैं.
Oh, how many people were at the Dhamma Kranti retreat in Bodh Gaya?
कितने लोग आएंगे धम्म क्रांति शिविर में बोध गया?
Oh, 2,000 people.
2,000 लोग.
That's strange. I thought there were only about 200.
मैं सोचता हूँ नहीं ये तो सच नहीं यहाँ तो 200 लोग ही.
Oh, no, 2,000.
नहीं 2,000 लोग.
So people don't report accurately.
तो लोग क्या है सही मायने में जो तथ्य है उसको नहीं बताते.
They don't see accurately. They don't report accurately.
वो चीजों को यानी वास्तविक रूप से नहीं देखते हैं वास्तविक रूप से बतलाते नहीं.
And this creates a great deal of confusion, a great deal of distrust.
और इससे क्या है कि एक संभ्रम निर्माण होता है एक गलत संदेश जाता है.
So in Buddhism we learn to be completely objective.
तो बौद्ध धर्म में हम पूरी तरह सुस्पष्ट रहने की कोशिश करते हैं.
We try to see and report exactly what is there.
हम पूरी तरह वही देखने की कोशिश और बताने की कोशिश करते हैं जो वहाँ है.
We try to observe the world without reaction.
हम संसार को उस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं जिसमें प्रतिक्रियाएं ना हो.
Whatever happens, we see it.
जो भी होता है उसे हम देखते हैं.
We don't interpret it.
हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं.
We just see it.
हम केवल उसे देखते हैं.
And then we're better able to deal with it.
और ताकि हम उसके साथ फिर ठीक से पेश आए.
This is one of the major aspects of our Buddhist practice.
So यह बौद्ध आचरण का बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण आयाम है.
We need to train ourselves in this sort of mindfulness.
इस तरीके कि सजगता में हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है.
We need to train ourselves just to see what is there.
हमें देखने की आवश्यकता है कि जैसा है वैसा.
The Buddha has no prejudice.
बुद्ध के मन में कोई क्लेश नहीं है.
He has no prejudice.
उनमें कोई पूर्व धारणा या पूर्वग्रह नहीं है.
So whatever is there, he just sees.
जो कुछ भी वहाँ है वो उसे देखते हैं.
So when you go to the Buddha looks at you.
जब आप बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध आपके तरफ देखते हैं।
And he just sees you as you are.
आपको बुद्ध वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं।
This is in a way what we're trying to do in the first communication exercise.
तो यही हम करने की कोशिश कर रहे थे जब हम संपर्क सराव कर रहे थे पहला।
If we can develop this sort of objectivity, this sort of just seeing observation,
अगर ऐसे निरीक्षण की दृष्टि या ऐसे दृष्टि को हम प्राप्त करते हैं,
it brings great peace.
तो यह हमें गहरी शांति लाती है।
The worldly winds don't blow upon us.
तो यह संसार के जो लहरें हैं, यह आपको विचलित नहीं करती।
We feel completely calm, completely detached.
आप पूरी तरह शांत और अनासक्त का अनुभव करते हैं।
Hatred doesn't arise in our hearts.
द्वेष की उत्पत्ति अपने मन में नहीं होती।
And we can even see bad things that people do and understand why people do them.
जो बुरी चीजें हो रही है उसे हम समझते हैं यह क्यों हो रही है और हम उसको समझ पाते हैं कि इसका कारण क्या है।
You know, for instance, you see terrorists.
अब मान लीजिए कोई आतंकवादी है।
And you see, you can understand why they're doing what they're doing.
तब आप देखते हैं, आप समझ पाते हैं ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है।
This doesn't mean you accept it.
इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसको स्वीकारते हैं।
But because you can see why they're doing it, you can remove the causes of that terrorism.
क्योंकि आप देखते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस कारण को फिर आप निकालने के लिए सक्षम होते हैं।
So with this sort of objectivity, you're better able to make the world a better place.
तो इस तरीके के दृष्टिकोण से आप दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने में कामयाब होते हैं।
Dr. Babasaheb Ambedkar was outstandingly objective.
बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है यह बहुत ही असाधारण है, असामान्य है।
He just looked at Indian society.
उन्होंने भारतीय समाज को जैसी है वैसी देखा।
And he saw that the whole of Indian society was tricked by a sort of magic trick. Fooled by a magic trick.
तो उन्होंने देखा कि यह भारतीय समाज है ऐसी कोई जादुई असत्यता से इसको बेवकूफ बनाया गया है।
That magic trick is the trick of caste.
तो यह जो जादुई सत्य है यह है जात।
It doesn't exist.
क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
This is what Baba Saheb saw.
यही बाबा साहब ने देखा।
If you actually look, it doesn't exist.
अगर आप इसे वास्तविक रूप से देखना चाहते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
It's just a prejudice that people have got in their minds.
यह मन की पूर्व धारणा है, कल्पना है, लोगों ने गहरी अपने मन में बसाई है।
It's just a prejudice that comes out of their kleshas.
यह उनके क्लेशों से आई हुई पूर्व धारणा है।
It has no real existence.
इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है।
So the Baba Saheb just looked at it, he just saw it, saw what it was.
तो बाबा साहब ने इसे देखा जैसा है वैसा इसे परखा।
We need this kind of objectivity, this kind of non-reactivity to reform society.
तो इस तरीके का एक यानी क्या कह सकते हैं कि अप्रतिकूलता हमें देखने की आवश्यकता है ऐसे सुसंवादी समाज को निर्माण करने के लिए।
Society doesn't need new reactions.
Society
doesn't need new reactions.
समाज को एक नई प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
It needs a calm, objective, loving awareness.
इसको चाहिए शांत, एक केंद्रित ऐसी यानी प्यार भरा सुसंवाद।
And that is represented by the Blue Buddha.
यही दर्शाता है नीले बुद्ध के साथ।
The Blue Buddha represents this kind of calmness, this objectivity.
तो बुद्ध जो है इस तरीके की एक स्थिर शांतता का प्रतीक है।
The seeing of things as they really are.
चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे है।
This transcendence of all the kleshas.
तो सभी क्लेशों के परे यह जाती है।
So it's a state of great depth, of great calmness, of great peace.
यह स्तर है गहरे शांति का, गहरे अचलता का।
So that's what happens when we enter the mandala from the east.
तो यही होता है जब इस मंडल में हम प्रवेश करते हैं पूर्व दिशा से।
We meet the Blue Buddha.
हम नीले बुद्ध को मिलते हैं।
And the Blue Buddha is touching the earth.
और ये जो नीले बुद्ध है यह भूमि स्पर्श मुद्रा में है।
And he holds a vajra, the indestructible vajra.
यह वज्र जो कभी भी रुक नहीं सकता, ऐसे वज्र को वो पकड़े हुए।
And he's supported by the elephant.
और इनका जो आधार है वह हाथी है.
The elephant with its unstoppable strength.
ऐसा हाथी जिनके शक्ति को कोई रोक नहीं सकता.
And he has the mirror-like wisdom.
और इनकी जो प्रज्ञा है वह ऐसे आईने जैसी है.
That just sees exactly what is there.
वह बिल्कुल वही देखते हैं जो वास्तविक रूप में है.
Without judgment, without distortion.
बिना किसी अपने अनुमान के, बिना किसी क्या कह सकते हैं गलत धारणा से.
So as we approach the blue Buddha in this way, we come to know the Buddha more deeply.
इस तरीके से जब हम बुद्ध को देखते हैं, तो बुद्ध को हम और गहराई से समझते हैं.
We begin to develop those qualities within ourselves.
और इस तरीके की जो गुण है, उन गुणों को हम अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करते हैं.
And I very much hope as these 5 days go by, you will experience yourself more and more like that blue Buddha.
और मुझे आशा है कि आने वाले इन 5 दिनों में इन सारे बुद्धों को हम गहराई से अनुभव करेंगे.
नमो बुद्धाय, जय भीम.